ये गोपाल जानते हो कौन है? गोपियों को पैया पड़ने वाला है, किंतु अखिल विश्व ब्रह्मांड का नायक है। इसलिए सचमुच में मैं आशीर्वाद करता हूं कि तुम लोग कन्हैया ही केवल सहारा हो, और तुम लोग कन्हैया को हरणीय जीवन में पुकारा करो, तब जीवन में सुखी। इनका पूरा हो गया, ये लड़की क्या करेगी? जी इनका पूरा ठीक है, ठीक है, आज यही प्रोग्राम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपा श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप गोस्वामी महाराज चरण कमलों में सादर साष्टांग प्रणाम प्रणति पुष्पांजलि अर्पित है। तत्पश्चात सन्यासीगण, ब्रह्मचारीगण और उपस्थित सज्जन माताएं बहनें यथा योग्य मेरा अभिवादन स्वीकार करें। हम लोग तो बहुत कुछ कहना चाहते थे कृष्ण के संबंध में, किंतु समय का बहुत अभाव है। इधर धर के कार्यक्रम होने लग गए, कुछ कह नहीं सके, बहुत कुछ सुनने के लिए है। विशेष करके कलयुग में राधा जी के भाव और कांति को लेकर के सचिनंदन गौर हरि ही प्रकट हुए, कृष्ण ही। उन्होंने जीवों को जो दिया है कृष्ण भी नहीं दे सके, कृष्ण अवतार में भी वही कृष्ण नहीं दे सके जो चैतन्य महाप्रभु दे सके। तो उन शिक्षाओं में से हम लोग कुछ कुछ देना चाहते थे, समय भाव से नहीं कर सके। विशेष करके श्रीमद् भागवत पीठिकाओं में श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो अनुपम दान दिया है जगत को, वो हम देना चाहते थे, समय भाव से नहीं हो सका। संक्षेप में ये बतलाएं, कल कृष्ण की बाल्य लीलाएं कुछ हुई हैं, उनका वर्णन हमारे सीमांत तीर्थ महाराज जी ने किया है। इसके बाद में मैं तो दामबंधन लीला भी वर्णन करना चाहता था, जिसका आदि अंत नहीं है, बाहर और भीतर नहीं है, ऊपर और नीचे नहीं है, कुछ नहीं है। तो भी यशोदा मैया ने उनको प्रेम से बांधा, वो रस्सी से नहीं बंधे, प्रेम की डोरी से। इसके पहले राम को किसी ने नहीं बांध रखा, नृसिंहदेव को किसी ने नहीं बांधा। तो एकांतिक प्रेम से, वात्सल्य प्रेम से ये बंध सकते हैं, और किसी से नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्मा मोहन में ब्रह्मा जी को मोहन किया। ब्रह्मा जी कृष्ण की लीलाएं देख करके अघासुर का वध, और देखा जी आकाश मंडल में अघासुर के मरने के बाद में एक तेज गया, और फिर जब कृष्ण मुख के मुखार मुख से निकले तो उनके अंदर में प्रवेश कर गया। देख करके महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या आश्चर्य की बात, इतना तपस्या करने के बाद भी कृष्ण में नहीं लोग मिलते, और ये असुर होकर के भी मिला। तो इनकी कुछ लीलाओं को देखना चाहते, किंतु उन्होंने कुछ गलती की। ब्रह्मा जी भी गलती कर जाते हैं, भगवान के सामने कौन नहीं गलती कर सकता। उन्होंने गैया और बछड़ों को चुरा लिया और सोचा कि देखे इसके बाद में क्या लीला करते हैं। यदि प्रार्थना केवल कर लेते जो आप कृपा करके और दूसरी लीलाएं दिखलाए तो दिखला सकते, किंतु गैये और बछड़े सब चुरा लिए और कंदरे में भी तो, और चले गए अपने ब्रह्मलोक में। वहां जाने के बाद में उनके प्रहरियों ने कहा, अरे ब्रह्मा जी तो यहां पर बैठे हैं, तुम कौन आ गए? उनको घुसने नहीं दिया। ओ तो ये कोई नहीं, वही प्रभु ही शायद। लौट करके आए, एक वर्ष हो गया और कृष्ण वो लीला करते रहे। सभी बछड़े गायें जितने थे उनके स्वभाव रूप भाषा बोली सब कुछ बछड़े जैसे हो, लाखों बछड़ों करोड़ों बछड़े हो करके और उनका दूध पान करने लगे, और लाखों गोपियों के पुत्र बन करके उनकी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी कृष्ण ने, कोई नहीं समझ सका। अंतिम दो एक दिन रह गया, बलदेव जी ने कहा, गोवर्धन में गायें चर रही थी और इधर मधुबन में बच्चे लोग कृष्ण अपने गऊं चरा रहे। बच्चों को देख करके ग्वाल बाल और बछड़ों को देख करके गायें अपने नवीन बच्चों को छोड़कर के पुराने बच्चों के लिए, एक वर्ष के पुराने जो बच्चे थे उनको दूध पिलाने के लिए दौड़ी। बलदेव जी ने ये कैसे बोला, ये कैसे? पहले कृष्ण को ही गायें सबसे अधिक पहले प्यार करती थी, अपने बछड़ों को नहीं। और माताएं अपने बच्चों को प्यार न कर करके कृष्ण को प्यार करके तब अपने बच्चों को प्यार, अब उल्टा कैसे हो गया? अब ये अपने अपने बछड़ों को अपने अपने बच्चों को प्यार कर रही हैं। ध्यान लगाया, मुस्कुराने लगे, किसकी माया? कृष्ण खड़े थे, कृष्ण से पूछा, भैया ये किसकी मैया? माँ है, माया है। तुमको एक जसोदा मैया के दूध से पेट नहीं भरा, कोटि कोटि बछड़े बन करके दूध पी रहे हूं और उसे भी पेट नहीं भरा, तो करोड़ों करोड़ों ब्रजवासियों की बेटे बन करके और ये दूध पी रहे हो? कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण की माया को बलदेव जो साक्षात कृष्ण ही हैं नहीं समझ सकते, और की तो बात क्या है। हुआ क्यों? यों कृष्ण की इच्छा से योग माया गायों की मन की मनोकामना को पूर्ण करनी चाहती थी, करना चाहते थे कृष्ण, इसलिए योग माया को लाकर ब्रह्मा जी को मोहन करके ऐसे करा लिया कि वो समझते हैं कि ये मैंने चुराया बछड़ों, किंतु चुराया किसने? योग माया। कारण क्या था? इन करोड़ करोड़ गोपियों की इच्छा को पूर्ण करना ये था कि उनके बेटे हों, और गायों की इच्छा थी कि हमारे बेटे हों, बछड़े हों, उनकी सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और एक विशेष बात, उस समय जो करोड़ों करोड़ों गोप बालक कृष्ण बने उस समय गर्गाचार्य जी ने ऐलान किया, घोषणा की, अभी यह वर्ष और यह समय विवाह के लिए बहुत उपयुक्त है, सब अपनी लड़कियों को, यहां तक कि पेट में भी लड़की हो तो उसे शादी करा दो गोपों से, किंतु गोप कौन थे, कृष्ण बने, इसलिए सबकी परोक्ष रूप में शादी उनसे हो गई, कृष्ण से। इसलिए स्वरूपतः ये प्रक्रिया नहीं है, कृष्ण की और कृष्ण की शक्ति है, तभी ब्रह्मा जी को मोहित करके और कृष्ण की इच्छा ने जो माया के द्वारा ये इच्छा है। इस तरह से ब्रह्मा जी जब लौट करके आए, देखा अरे ये बछड़े तो देखते हैं कि वही, और ये कंदरे में हमने बंद किया है वो भी तो वहां पर है, और यहां पर भी असल कौन है, कुछ था न पा सके, जमीन पर जोर भरकर उनको प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। देखा जी जितने बछड़े जितने गायें जितने जो कुछ सब कुछ कृष्ण ही बने हुए हैं, फिर प्रार्थना करने लगे, नौ विद्यते अम्रवक्षे तम चंबराय गुंजावतांश परिकुचल सन्मुखाय वन्यश्रये कवलभित्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुपांगजाय माने क्या, पशु को चराने वाले, गाय को चराने वाले के जो मालिक हैं नंद बाबा, उनके अंग से उत्पन्न, देखिए ये संपूर्ण रूप से नंद बाबा के यशोदा मैया के पुत्र हैं, लोगों की ये भ्रांत धारणा है, आंशिक रूप में उनके वासुदेव के रूप में उनके जन्म है। इस तरह से एक ही लीला में कितनी लीलाएं हैं। अंत में उन्होंने कहा अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप्रियम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। आप ब्रह्म सनातन है, परम ब्रह्म है, आप ब्रजवासियों के किसी के मित्र हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के प्रियतम हैं, आप इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं, आपको नमस्कार है। लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं तो वो जाने, मैं तो कुछ भी इनके संबंध में नहीं जान सका, ये कह करके वंदना इत्यादि करने लगे। इस प्रकार से अब आगे कुछ और कहने की इच्छा थी, संक्षेप में दो एक बातें बतला रहा हूं। देखिए प्रेम तो बहुत प्रकार के होते हैं, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। मधुर माने गोपियों का भाव ही, या मधुर तीन प्रकार का है ना, तीन प्रकार का है, साधारण प्रेम, संबजसा प्रेम और समर्था प्रेम। कुब्जा वो लेकर के आ रही थी वो तिलक रचना करने के लिए कंस के लिए, और कृष्ण ने कहा जैसे मेरे कर देगी, बस देख करके मुक्त हो गई, तिलक कर दिया, कृष्ण ने उसको थोड़ी पकड़ा और झट ऐसे किया, परम सुंदरी नारी बन गई, कृष्ण के उन्होंने अंचल पकड़ लिए पीताम्बर, कृष्ण आचे से पीछे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कुछ दिनों के बाद में कंस के मारने के पश्चात जब मिले, कृष्ण उसके घर में गए उद्धव जी को साथ लेकर के, उस समय में कृष्ण ने उसकी इच्छाएं पूर्ण की। किंतु ये प्रेम क्या है, साधारण प्रेम कृष्ण से है, किंतु देख करके और फिर काम अपना उत्पन्न होता है, और बस कृष्ण वहां से चले जाएंगे, फिर कृष्ण के प्रति है, कृष्ण से और दूसरे के प्रति नहीं, किंतु अपनी कामना वासना है, ये प्रेम नहीं है साधारण, चूंकि कृष्ण के प्रति लगा है इसको मान लिया। समझसा प्रेम किसका है, यह है रुक्मिणी सप्तभामा द्वारका की विपट्ट महिषियों का है? इनके प्रेम में एक है, कृष्ण वशीभूत नहीं हो सकते, यदि सेवा वासना रहे तब तो वशीभूत होंगे, और सेवा वासना न हो करके उसमें थोड़ी सी काम वासना मिल गई तो हजार श्रृंगार करें। रुक्मणी सप्तभामा इत्यादि करोड़ों उनकी प्रियतमा है, 16108 श्रृंगार करें, कामना से करें, सब कुछ करें, किंतु कृष्ण को वशीभूत नहीं कर पाए, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। यदि शुद्ध प्रेम सेवा है, काम की वासना है, तब तो हो जाएंगे वशीभूत, किंतु यह कभी कभी हो सकता है। और गोपियों के प्रेम को कहते हैं समर्था प्रेम, समर्था माने कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ, उसमें सेवा वासना के अतिरिक्त काम वासना का कहीं कोई गंध नहीं। जो कुछ करती हैं, श्रृंगार करती हैं, जो कुछ करती हैं, विहार करती हैं, शरीर की रक्षा करती हैं, ये सब कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए। गोपी प्रेम समझना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए कृष्ण कहते हैं नपारे हम निर्बद्ध संजुजा, सब कुछ छोड़ करके घर बार धन संपत्ति पुत्र परिवार सब छोड़ करके कृष्ण में एकदम एकांतिक रूप से उनको समर्पण कर दिया, उनकी सेवा कर। ऐसा उदाहरण गोपियां ही है, दूसरा नहीं। और उसमें भी चंद्रावली और राधिका जी, और उन दोनों में भी सब प्रकार से श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी। राधिका जी के भाव में ही महाभाव अधिरूप और उससे भी अधिक मोहन और अंत में मादन। मादन माने क्या? मिलन की स्थिति में ही विरह और मिलन की जितनी भी क्रियाएं और लक्षण हो सकते हैं, अष्टसात्विक भाव विकार इत्यादि हो सकते, सब कुछ उसमें, उसी में दिव्य उन्माद है जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है गोपियों का। तो ये सब समझने के लिए काफी समय चाहिए, संस्कार भी चाहिए, तब इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ये गोपियां जब कृष्ण रास हुआ, रास माने क्या? काम पर कृष्ण की विजय। समस्त गोस्वामियों ने टीकाओं में, श्रीधर स्वामी से लेकर के जितने भी टीकाकार हैं, ये कृष्ण की काम पर विजय है। कोटि कोटि गोपियां परम सुंदरी रूपवती गुणवती सब प्रकार से एकांत निर्जन स्थान बंशीवट जमुना का किनारा रात का समय पूर्ण चंद्र खिले हैं बेली चमेली जूई सब खिले हैं मयूर नृत्य कर रहे हूँ भौरे गुंजार कर रहे हैं और कोई भी पुरुष नहीं केवल कृष्ण हैं और सतकोटि गोपियां भी मिलकर के भी कृष्ण को काम से आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए सभी टीकाकारों ने वर्णन किया है कि कृष्ण की यह लीला काम पर भी है। कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी कुछ नहीं, और कैसा ये काम का है, इसलिए कामदेव जो करोड़ों लोगों के मनों को मत देने वाले हैं, इसलिए उनको मनमत मनमत कहा गया। ये सब लीलाएं कृष्ण ने की। इसके बाद में मथुरा में आए, मथुरा में कंस को मारा और उनके सहयोगियों को मारा, गुरुकुल में गए, गुरुकुल में सांदीपनी मुनि से 60 दिनों में 64 में 64 कलाएं सबसे थी, उनको क्या सीखना है, तो भी सीखा। सुदामा विप्र भी साथ में थे और इसके बाद में गुरुगृह में लौट रहे हैं और लौट करके एक दिन अपने पिताजी के भवन के ऊपर में पहुंच गए और उत्तर तरफ की देखा, वृंदावन की तरफ में देख करके उनकी घिघी बंद हो गई, रोने लगे, याद आई माता पिता की, सखाओं की याद आई, ब्रजवासियों की याद आई, अंत में गोपियों के प्रेम की याद आई और रो रहे हैं। इतने में उद्धव जी उनको खोजते हुए छत के ऊपर में गए, देख कृष्ण तो रो रहे हैं, देख करके निकट में पहुंचे, कृष्ण ने उनके हाथों में हाथ लेकर के बोला, जी उद्धव मेरे माता पिता मेरे विरह में मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, उनको जाकर के कुछ सांत्वना दे। और विशेष करके गोपियां कृष्ण में कृष्ण के लिए इस बात के लिए जी रही हैं, जीवन धारण ही की है कि कृष्ण ने आते समय में प्रतिज्ञा की कि मैं आज न कल न परसों जरूर आऊंगा। इसलिए गोपियों को विश्वास दीजिए कृष्ण तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, आएंगे, किंतु हो सकता है कि विलंब, यदि हम मर जाएं उनके विरह में तो कृष्ण फिर आएंगे तो वो भी विरह में मरेंगे। इसलिए मर नहीं गई, इसलिए मर भी नहीं रही, किस लिए? इसके लिए उद्धव जी ने कहा, देखो गीता में हमने कहा है मन मना भव, कृष्णदास मन रो लागे ना, कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या दशा है इस कीर्तन पदावली में है, आप लोग सुने।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मन रो ना सखी मेरो श्याम बिना, मन रो ना गेना हो, मन रो ना गेना सखी मेरो श्याम बिना, मन रो ना गेना हो, मन रो ना गेना सखी मेरो श्याम।
जी कह रहे हैं और कृष्ण जी कह रहे हैं गोपियां मेरी प्राण है और गोपियों का प्राण मैं हूं। गीता में मनमना भाव ये सब सर्वगुह्यतम उपदेश जो है मनमना भाव माने क्या, जिसने मन दे दिया है कृष्ण में। कैसे, उदाहरण के द्वारा संक्षिप्त में बताओ। कोई नवेली गोपी नंदगांव में ब्याह करके आई, कृष्ण के संबंध में बहुत कुछ सुना था, देखा नहीं था अभी तक। उसके सास ने कहा देखो सावधान रहना,
Radha Raman Hari Govind Jai Jai।
उसकी सास बोली, देखो संभल कर रहना, एक ब्रिज में काला सर्प है, वो यदि डस देगा तो विष नहीं उतरेगा। और उसी समय कृष्ण बछड़ों को चराने के लिए जा रहे थे, उसकी मनोकामना को वो समझ गए, ये हमारा दर्शन करना चाहती है, इसलिए हजारों बछड़ों में से एक बछड़े की पूंछ मरोड़ी, थोड़ा सा छुआ और बछड़ा ठीक वहीं पर पहुंचा जहां पर की नवेली दरवाजे से कृष्ण को दर्शन करना चाहती। सास ने बहुत मना किया, मत जाओ, तो तुम क्यों जा रही है, तुम्हारी बेटी क्यों जा रही है, डसेगा तो तुम्हारी बेटी को भी डसेगा, तुमको डसेगा, किंतु वो मानी नहीं, दरवाजे पर खड़ी हो गई और देख रही थी। कृष्ण झट आए, बछड़ा वहीं पर पहुंचा और कृष्ण ने उसके थोड़ी में बांसुरी स्पर्श करा दी और उसका चित्त निकाल लिया, चले गए बच्चे। वो देखते रह गई, खड़ी की खड़ी वही रही गई। सास ने कहा कि इसको सचमुच देखो, मैंने कहा था मानी नहीं, तब फिर उसको झकझोरा घर में ले गई, बोलिए दधि मंथन करो, तो राई की हड़िया लेकर के और मटकी लेकर के बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में आई, देखी गई थी तो राई मथ रही है, फिर उसको झकझोरा कर जैसे पानी लाओ, एक घड़ा दे दिया उसके ऊपर में, घड़ा डोल बाल्टी दे दी, रस्सी दे दी और एक बच्चे को गोद में दे दिया। जरा दूध था वहां पर तो वो स्वभाव से तो चली गई, मन तो था नहीं, कुएं पर रखा, बच्चे को ही रखा, घड़े को भी रखा और रस्सी फंदा बना करके गले में, घड़े में देना था उसको ना दे करके बच्चे के गले में दे दिया। वो वहां पर जितनी स्त्रियां थी बोली, अरे इसको भूत लग गया। तो जो जानने वाली कह, भूत नहीं लगा, कृष्ण का पुत लगा, नंद का पुत लगा है, यह है मनमना भव। प्रत्येक गोपियों की ऐसी ही दशा थी और भगवान को पाने के लिए भी ऐसा ही मनमना भाव होना चाहिए। गोपियां ही एकमात्र इसका उदाहरण है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारी वो प्राण है, मैं उनका प्राण हूं, उनका मन हमारे अंदर में ही रहता है, नहीं तो ना जाने कब मर जाता, इसलिए जाओ उनको सांत्वना देना, किंतु अपने अपनी बात से सांत्वना मत देना। मैं तुमको बहुत सी बातें बतलाता हूं, संदेश, ये संदेश उनको देना, इसलिए इसको उद्धव संदेश कहा जाता है। उन्होंने चलते चलते अपना रथ, सोने का रथ जो कंस का था, जिसमें अक्रूर उनको लाया था, उसी रथ में बैठा करके और उनको बैठा दिया और चलने लगे, कहने लगे। उद्धव जी को शंका हुई, उनको शंका ये हुई, मैं कृष्ण के बिना रह कैसे रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। कृष्ण ने उनको बताया कि देखो, मैं तो मथुरा में आंशिक रूप में थोड़ा सा हूं, मैं पूरा रूप में वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। जो जाते हैं वासुदेव जाते हैं मथुरा में, और द्वारका में जाते हैं वासुदेव जी, कृष्ण नहीं जाते, कभी जा ही नहीं सकते, उनका कभी गोपियों के साथ में किसी के साथ में वियोग नहीं। तो देखो उद्धव जी को कहा, जब मैं तुम जाना वहां देखना, और दूसरी बात एक रहस्य इसका यह है, कृष्ण ने उद्धव जी को क्यों भेजा वृंदावन, सांत्वना देना, ये नहीं जानते थे कि हमारे जाए बिना उनको सांत्वना कोई लाभ नहीं दे सकता, मेरे ही जाने से होगा, किंतु तो भी सोच रहे हैं कि मैं किसी कारण से वहां नहीं जा सकता। प्रेम की दो दशाएं होती हैं, एक मिलन एक विरह। मिलन में गोपियों को रास इत्यादि के समय में आनंद हुआ, किंतु विरह में क्या होता है, सारी उनकी लीलाएं हृदय में उस समय में स्फूर्ति होती हैं, और उसे मिलन से भी अधिक आनंद होता है भीतर में। इसलिए सोचा मैंने प्रेम गोपियों से सीखा है, गोपियों की पाठशाला में ढाई अक्षर प्रेम का पदार्थ पंडित हो, है तो ढाई अक्षर, किंतु कृष्ण ही, कृष्ण का स्वरूप प्रेम ही है, प्रेम ही कृष्ण है, गॉड इज लव, लव इज गॉड। इसलिए सोचा मैं गोपियों की पाठशाला में जहां पर मैंने प्रेम सीखा है, असल में कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, किंतु हम लोगों के लिए कृष्ण का प्रेम उपयोगी न हो करके वो तो रसास्वादन करते हैं, इसलिए गोपियों में जो प्रेम है वही हमारे लिए कृष्ण को आस्वादन करने के लिए उपयोगी है। इसलिए कृष्ण मदनक्ख भाव इत्यादि राधा जी से सीखते हैं, उनमें नहीं है, उनमें महाभाव तक है। ललिता विशाखा उनकी सखियों में भी महाभाव रूढ़ तक है, ये सब नहीं है, मदनक्ख भाव नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये उद्धव जाएगा उनकी प्रेम की पाठशाला में, शिक्षा करेगा प्रेम। अभी मैं गोपियों के विरह में तड़प रहा हूं, ब्रजवासियों के विरह में तड़प रहा हूं, अकेला, हमको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं, वहां पर नंद बाबा यशोदा को भी सांत्वना देने वाले लोग हैं, राधा जी को भी ललिता विशाखा सब सांत्वना देती है, परस्पर दुखों को बांट लेती है, किंतु कृष्ण का विरह जो गोपियों के लिए ब्रजवासियों के लिए कोई बांटने वाला नहीं, अपने विरह व्यथा को किसको सुनाए कोई है नहीं। यदि उद्धव जाएगा तो वहां पर प्रेम की पाठशाला में पढ़ करके आएगा तो उसे दो चार बातें कर सकता, अपना दुख कुछ बांट लूंगा भेजा। किंतु जब उस कॉलेज में गए उद्धव जी, गोपियों ने परीक्षा की, परीक्षा क्या की, किसी कॉलेज में भर्ती होने के लिए परीक्षा ली जाती, परीक्षा ली, उद्धव बतलाओ तो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक निस्वार्थ और एक स्वार्थ, दो प्रकार का। हमारा प्रेम निस्वार्थ था और कृष्ण का भी प्रेम हमारे प्रति निस्वार्थ था, टूट कैसे गया, कैसे टूट गया, 16108 रानियों के साथ में शादी कर दी और हमें बुला दिए, ये कैसे हो गया उद्धव? उद्धव जी सिर खुजलाने लगे, नहीं उत्तर दे सके। इसलिए कॉलेज में भर्ती नहीं हो सके, केवल बाहरी स्ट्रक्चर देखा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ललिता विशाखा और प्रिंसिपल राधा जी को भी देखा, किंतु उनके भावों को तनिक भी ले नहीं सके। इसलिए अंत में वंदना की थी, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिषेक, गोपियों की चरण धूलि के मैं दूर से वंदना करता हूं। यहां तक और भी वंदना की, आसाम हो चरण रेण किसाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लताओं से देना, ओ सौभाग्य से यदि वृंदावन में एक लता गुल्म औषधि किसी प्रकार से हमारा जन्म हो जाए और गोपिया अभिषेक के समय में अपने चरण की धूलि हमारे सिर पर हमारा जीवन साथ हो जाए। इसलिए देखा किंतु कोई भाव ले नहीं ले सके। नंद बाबा के यहां पर गए, शाम हो गई थी, शाम हो गई थी, नंद बाबा सुने जय आया है कृष्ण का मित्र, हमारा भतीजा आया है, घर में ले गए, ब्राह्मण के घर से खीर बनाया और बिना चीनी की ही मीठा का ही ऐसे ही सादा खीर बना, उनको खिलाया पिलाया। उद्धव जी कहते हैं जी कृष्ण ने हमको सांत्वना देने के लिए भेजा, और इधर नंद बाबा पूछना चाहते हैं कि हमारा लाला कृष्ण कैसा है, गला बंद हो जाता है, रोने लगते हैं, पूछ नहीं सके डायरेक्ट रूप में। उन्होंने कहा हमारा भैया वसुदेव ठीक है, भगवान की कृपा से उसके पापों ने कंस के रूप में उसको कंस को मारा, अब तो कुशल है। किसी प्रकार से बोले जे हमारा लाला कैसा है, कहते हुए फिर रोने लगे। कहते हैं कि मैं कृष्ण को भूलने के लिए यमुना के तट पर जाता हूं और वहां पर देखता हूं कृष्ण की लीलाएं सब वहां पर हुई, कृष्ण की लीला ज्यादा। गोवर्धन में जाना भूलने के लिए जाता हूं, उसका कोई वृक्ष कंदरा ऐसा कोई नहीं है जहां पर कि कृष्ण की कोई लीलाएं नहीं हुई हो और उनका स्मरण न दिला सके। कहीं भी ब्रज में जाता हूं सांत्वना नहीं मिलती, और कह करके रोने लग गए। उन्होंने कहा जी सांत्वना तो देनी होगी, किंतु क्या कहूं, यदि कोई कृष्ण के लिए रोता है उसका जन्म सार्थक है। एक बुंद भी कृष्ण के लिए बीरा से रोए उसी का रोना जगत में सार्थक है। जो अपने भाई बंधुओं के लिए रोते हैं वो तो सभी रोते हैं, वो विषयी लोग हैं। तो ये कृष्ण के लिए ये रो रहे हैं अपना पुत्र मान करके, क्यों उनको जो सृष्टि ब्रह्मा इत्यादि के भी सृष्टि करने वालों के भी मूल सृष्टि करने वाले उनको अपना पुत्र मान रहे हैं और उसके विरह में रो रहे हैं, तो मैं कैसे मना करूं। किंतु सांत्वना तो देना है। फिर सोचे मैं कैसे कहूं जैसे मत रो, मैं दिन को कहने और कहूं जो खूब रो तो सांत्वना देना कैसा होगा। कुछ सोच विचार करके कर नहीं सके, अंत में यही बोले शास्त्र कहते हैं जो कृष्ण के लिए रोए उसी का जीवन सार्थक है। तो ये बोले आप महाभागा हैं, आपकी पत्नी महाभागा, जो कृष्ण जो सर्वस्तरेश्वरों के ईश्वर है, स्वयं अनादि हैं, जगत के आदि हैं, और उसको आपने पुत्र मानकर और उसके लिए रो रहे हैं। नंद बाबा कुछ देर के लिए चुप हो गए, बोले जे बेटे मैंने सोचा था तुम्हारी अकिल कुछ आ गई है, कृष्ण के साथ रहते हो कुछ बुद्धि हो, किंतु तुम्हारे दूध के दांत अभी गिरे नहीं, अकल नहीं हुई। कैसे? उद्धव जी सोच रहे जी क्यों ऐसा करें। बोलिए देखो मेरा बेटा कृष्ण, मैंने सोचा था जब मेरा बेटा ही है और कुछ नहीं, उस पर मैंने शासन किया, अपनी जूती लाने के लिए सिर पर कहा और कितनी उसको आदेश मैंने दिया पुत्र समझा, और तुम करे जो तू भगवानों का भी स्वयं भगवान है, तो मेरे जैसा कौन दुर्भागा हो गया ऐसा बेटा पा करके भी जिसको मैं खो दिया, तुम कहते हो परम सौभाग्यवान है। ध्वज बोले ये सच, इनको क्या कहूं आखिर मेरे पास तो दूसरा कोई सांत्वना देने के लिए शब्द ही नहीं है। नंद बाबा बोलिए देखो एक ही बेटा था और एक ही पिता था, वो कौन? महाराज दशरथ। पुत्र के वियोग में बस हाराम और समाप्त, मेरा हृदय वज्र का बना हुआ, मैं अभी तक मर नहीं गया तो मैं पिता कहां हुआ। सारी रात इसी प्रकार से बढ़ता है। घर में मकड़ों ने जाल बुन दिया था रसोई घर के ऊपर, बर्तन औंधे पड़े थे, रसोई किसके लिए हो, नंद बाबा यशोदा दोनों ऐसे ही अंधे हो गए। और इसके बाद में सवेरा हुआ, वो स्नान करने के लिए गए, कृष्ण कुंड वहीं पर है नंदगांव में, और देखा एक सुंदर कदंब का क्यारी है, करोड़ों कदंब वृक्ष हैं, और उसी में जो गोपियां कृष्ण के वियोग के बाद में घर नहीं गई थी अभी तक कृष्ण के लिए वहीं पर प्रतीक्षा कर रही थी। राधा जी तो मारो मरी हुई हैं, गोरी सी माने सोने की पुतली है, उसको नाक में रुई दे करके देख रहे हैं कि जी रही है कि नहीं। गोपियों ने उद्धव जी को देख करके कहा, अरे ये सोने का रथ कैसे आया? अरे सखी इसलिए आया, कंस मारा गया है ना, उसकी तेरहवीं करनी है, उसको पिंड देना है। तो ब्रजवासी लोग तो सभी मरे हैं, उनका जाओ फिर पिंड ले आओ और उसको तेरहवीं करो, इसलिए आया है, नहीं तो आने की जरूरत क्या। तो दूसरे ने कहा, जी देखो ये कृष्ण का मालूम होता है, दूत है जरूर, क्योंकि कृष्ण ही जैसा है, श्याम है किंतु श्याम नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखो इसको यहां क्या जरूरत, हमारा तो संबंध था जब तक कि वो मानते थे, हम लोग को छोड़ करके चले गए, विवाह शादी सब कुछ कर ली, अब तो कोई संबंध नहीं। हाँ माता पिता के साथ में संबंध नहीं छूट सकता, कुपुत्र यदि छोड़ भी देगा तो भी ये कहना पड़ेगा कि मैं उनका पुत्र हूं, हमारी माता वो है, क्योंकि उनके रक्त से शरीर इनका बना हुआ है, तो इनको यहां क्यों आना चाहिए, तो वहां जाना चाहिए, यहां फिर आए क्यों, इस तरह से आक्षेप करने लगी। अब इसके बाद में आपको संक्षेप में ये सुनाएंगे और मुझे जाने का आदेश दीजिए, कल तो हम लोगों को यहां से जाना है, तो अगले समय में कहीं कभी आए कुछ अधिक समय लेकर के, तो उनके संबंध में ब्रज की कृष्ण की लीलाओं के संबंध में गूढ़ रहस्य हैं, उसको समझाने की और कहने की इच्छा थी। संक्षेप में दो एक बातें बतला रहा हूं। देखिए प्रेम तो बहुत प्रकार के होते हैं, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। मधुर माने गोपियों का भाव ही, या मधुर तीन प्रकार का है ना? तीन प्रकार का है, साधारण प्रेम, संबजसा प्रेम और समर्था प्रेम। कुब्जा वो लेकर के आ रही थी वो तिलक रचना करने के लिए कंस के लिए, और कृष्ण ने कहा जैसे मेरे कर देगी, बस देख करके मुक्त हो गई, तिलक कर दिया, कृष्ण ने उसको थोड़ी पकड़ा और झट ऐसे किया, परम सुंदरी नारी बन गई, कृष्ण के उन्होंने अंचल पकड़ लिए पीताम्बर, कृष्ण आचार्य पीछे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कुछ दिनों के बाद में कंस के मारने के पश्चात जब मिले, कृष्ण उसके घर में गए उद्धव जी को साथ लेकर के, उस समय में कृष्ण ने उसकी इच्छाएं पूर्ण की। किंतु ये प्रेम क्या है, साधारण प्रेम कृष्ण से है, किंतु देख करके और फिर काम अपना उत्पन्न होता है और बस कृष्ण वहां से चले जाएंगे, फिर कृष्ण के प्रति है, कृष्ण से और दूसरे के प्रति नहीं, किंतु अपनी कामना वासना है, ये प्रेम नहीं है साधारण, चूंकि कृष्ण के प्रति लगा है इसको मान लिया। समझसा प्रेम किसका है, यह है रुक्मिणी सत्यभामा द्वारका की पट्ट महिषियों का है? इनके प्रेम में एक है, कृष्ण वशीभूत नहीं हो सकते, यदि सेवा वासना रहे तब तो वशीभूत होंगे, और सेवा वासना न हो करके उसमें थोड़ी सी काम वासना मिल गई तो हजार श्रृंगार करें, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि करोड़ों उनकी प्रियतमा है, 16108 श्रृंगार करें, कामना से करें, सब कुछ करें, किंतु कृष्ण को वशीभूत नहीं कर पाते, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। यदि शुद्ध प्रेम सेवा है, काम की वासना है, तब तो हो जाएंगे वशीभूत, किंतु यह कभी कभी हो सकता है। और गोपियों के प्रेम को कहते हैं समर्था प्रेम, समर्था माने कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ, उसमें सेवा वासना के अतिरिक्त काम वासना का कहीं कोई गंध नहीं है, जो कुछ करती हैं श्रृंगार करती हैं, जो कुछ करती हैं विहार करती हैं, शरीर की रक्षा करती हैं, ये सब कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए। गोपी प्रेम समझना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए कृष्ण कहते हैं नपारे हम निर्बद्ध संजुजा, सब कुछ छोड़ करके घर बार धन संपत्ति पुत्र परिवार सब छोड़ करके कृष्ण में एकदम एकांतिक रूप से उनको समर्पण कर दिया, उनकी सेवा कर। ऐसा उदाहरण गोपियाँ ही है, दूसरा नहीं। और उसमें भी चंद्रावली और राधिका जी, और उन दोनों में भी सब प्रकार से श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी। राधिका जी के भाव में ही महाभाव अधिरूप और उससे भी अधिक मोहन और अंत में मादन। मादन माने क्या? मिलन की स्थिति में ही विरह और मिलन की जितनी भी क्रियाएं और लक्षण हो सकते हैं, अष्टसात्विक भाव विकार इत्यादि हो सकते, सब कुछ उसमें है। उसी में दिव्य उन्माद है जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है गोपियों का। तो ये सब समझने के लिए काफी समय चाहिए, संस्कार भी चाहिए, तब इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ये गोपियां जब कृष्ण रास हुआ, रास माने क्या? काम पर कृष्ण की विजय। समस्त गोस्वामियों ने टीकाओं में, श्रीधर स्वामी से लेकर के जितने भी टीकाकार हैं, ये कृष्ण की काम पर विजय है। कोटि कोटि गोपियाँ परम सुंदरी रूपवती गुणवती सब प्रकार से एकांत निर्जन स्थान बंसीवट जमुना का किनारा रात का समय पूर्ण चंद्र खिले हैं, बेली चमेली जूई सब खिले हैं, मयूर नृत्य कर रहे हों, भौरे गुंजार कर रहे हैं और कोई भी पुरुष नहीं केवल कृष्ण हैं, और सतकोटि गोपियां भी मिलकर के भी कृष्ण को काम से आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए सभी टीकाकारों ने वर्णन किया है कि कृष्ण की यह लीला काम पर भी है। कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी कुछ नहीं, और कैसा ये काम का है। इसलिए कामदेव जो करोड़ों लोगों के मनों को मत देने वाले हैं, इसलिए उनको मनमत मनमत कहा गया। ये सब लीलाएं कृष्ण ने की। इसके बाद में मथुरा में आए, मथुरा में कंस को मारा और उनके सहयोगियों को मारा, गुरुकुल में गए। गुरुकुल में सांदीपनी मुनि से 60 दिनों में 64 में 64 कलाएं सब सीखी। उनको क्या सीखना है, तो अभी सीखा। सुदामा विप्र भी साथ में थे। और इसके बाद में गुरुगृह में लौट रहे हैं, और लौट करके एक दिन अपने पिताजी के भवन के ऊपर में पहुंच गए, और उत्तर तरफ की देखा वृंदावन की तरफ में, देख करके उनकी घीघी बंद हो गई, रोने लगे। याद आई माता पिता की, सखाओं की याद आई, ब्रजवासियों की याद आई, अंत में गोपियों के प्रेम की याद आई, और रो रहे हैं। इतने में उद्धव जी उनको खोजते हुए छत के ऊपर में गए, देख कृष्ण तो रो रहे हैं, देख करके निकट में पहुंचे। कृष्ण ने उनके हाथों में हाथ लेकर के बोला, जी उद्धव मेरे माता पिता मेरे विरह में मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, उनको जाकर के कुछ सांत्वना दो, और विशेष करके गोपियां कृष्ण में कृष्ण के लिए इस बात के लिए जी रही हैं, जीवन धारण नहीं की रही है कि कृष्ण ने आते समय में प्रतिज्ञा की कि मैं आज न कल न परसों जरूर आऊंगा। इसलिए गोपियों को विश्वास है कि कृष्ण तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, आएंगे, किंतु हो सकता है कि विलंब, यदि हम मर जाएं उनके विरह में तो कृष्ण फिर आएंगे तो वो भी विरह में मरेंगे। इसलिए मर नहीं रही, इसलिए मर भी नहीं रही, किस लिए? इसके लिए उद्धव जी ने कहा, देखो गीता में हमने कहा है मन मना भव। अच्छा कृष्णदास मन रो लागे ना। कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या दशा है इस कीर्तन पदावली में है, आप लोग सुने।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओ मन लोना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। हो मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम
I'm gonna go down,
उद्धव जी कह रहे हैं और कृष्ण जी कह रहे हैं, गोपियां मेरी प्राण हैं और गोपियों का प्राण मैं हूं। गीता में मनमना भाव ये सब गुह्यतम उपदेश जो है मन मन आप भवो, माने क्या, जिसने मन दे दिया है कृष्ण में, कैसे, उदाहरण के द्वारा संक्षेप में बतलाओ। कोई नवेली गोपी नंदगांव में ब्याह करके आई, कृष्ण के संबंध में बहुत कुछ सुना था, देखा नहीं था अभी तक। उसके सास ने कहा, देखो सावधान रहना, उसकी सास बोली, देखो संभल करता रहना, एक ब्रिज में काला सर्प है, वो यदि डस देगा तो विष नहीं उतरेगा। और उसी समय कृष्ण बछड़ों को चराने के लिए जा रहे थे, उसकी मनोकामना को वो समझ गए, ये हमारा दर्शन करना चाहती है, इसलिए हजारों बछड़ों में से एक बछड़े की पूंछ मरोड़ी, थोड़ा सा छुआ और बछड़ा ठीक वहीं पर पहुंचा जहां पर की नवेली दरवाजे से कृष्ण को दर्शन करना चाहती। सास ने बहुत मना किया, मत जाओ, तो तुम क्यों जा रही है, तुम्हारी बेटी क्यों जा रही है, डसेगा तो तुम्हारी बेटी को भी डसेगा, तुमको डसेगा, किंतु वो मानी नहीं, दरवाजे पर खड़ी हो गई और देख रही थी। कृष्ण झट आए, बछड़ा वहीं पर पहुंचा और कृष्ण ने उसके थोड़ी में बांसुरी स्पर्श करा दी और उसका चित्त निकाल लिया, चले गए बछड़े। वो देखते रह गई, खड़ी की खड़ी वहीं रही गई। सास ने कहा, जी इसको सचमुच देखो, मैंने कहा था मानी नहीं, तब फिर उसको झकझोरा घर में ले गई, बोलिए दधी मंथन करो, तो राई की हड़िया ले करके और मटकी ले करके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में आई, देखी गई थी तो राई मथ रही है, फिर उसको झकझोरा कर जैसे पानी लाओ, एक घड़ा दे दिया उसके ऊपर में घड़ा, डोल बाल्टी दे दी, रस्सी दे दी और एक बच्चे को गोद में दे दिया। जरा दूर था वहाँ पर तो वो स्वभाव से तो चली गई, मन तो था नहीं, कुएं पर रखा, बच्चे को भी रखा, घड़े को भी रखा और रस्सी फंदा बना करके घड़े में देना था उसको ना दे करके बच्चे के गले में दे दिया। वो वहाँ पर जितनी स्त्रियाँ थी बोली अरे इसको भूत लग गया। तो जो जानने वाली कह जी भूत नहीं लगा, कृष्ण का पुत लगा, नंद का पुत लगा है, यह है मनमना भव। प्रत्येक गोपियों की ऐसी ही दशा थी और भगवान को पाने के लिए भी ऐसा ही मनमना भाव होना चाहिए। गोपियां ही एकमात्र इसका उदाहरण है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारी वो प्राण है, मैं उनका प्राण हूँ, उनका मन हमारे अंदर में ही रहता है, नहीं तो ना जाने कब मर जाता, इसलिए जाओ उनको सांत्वना देना, किंतु अपने अपनी बात से सांत्वना मत देना। मैं तुमको बहुत सी बातें बतलाता हूँ, संदेश, ये संदेश उनको देना, इसलिए इसको उद्धव संदेश कहा जाता है। उन्होंने चलते चलते अपना रथ, सोने का रथ जो कंस का था, जिसमें अक्रूर उनको लाया था, उसी रथ में बैठा करके और उनको बैठा दिया और चलने लगे, कहने लगे। उद्धव जी को शंका हुई, उनको शंका ये हुई मैं कृष्ण के बिना रह कैसे रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। कृष्ण ने उनको बताया कि देखो मैं तो मथुरा में आंशिक रूप में थोड़ा सा हूँ, मैं पूरा रूप में वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। जो जाते हैं वासुदेव जाते हैं मथुरा में, और द्वारका में जाते हैं वासुदेव जी, कृष्ण नहीं जाते, कभी जा ही नहीं सकते, उनका कभी गोपियों के साथ में किसी के साथ में वियोग नहीं। तो देखो उद्धव जी को कहा जब मैं तुम जाना वहाँ देखना, और दूसरी बात एक थी रहस्य इसका यह है, कृष्ण ने उद्धव जी को क्यों भेजा वृंदावन, सांत्वना देना, ये नहीं जानते थे कि हमारे जाए बिना उनको सांत्वना कोई लाख नहीं दे सकता, मेरे ही जाने से होगा, किंतु तो भी सोच रहे हैं कि मैं किसी कारण से वहाँ नहीं जा सकता। प्रेम की दो दशाएं होती हैं, एक मिलन एक विरह। मिलन में गोपियों को रास इत्यादि के समय में आनंद हुआ, किंतु विरह में क्या होता है, सारी उनकी लीलाएं हृदय में उस समय में स्फूर्ति होती हैं और उस समय मिलन से भी अधिक आनंद होता है भीतर में। इसलिए सोचा मैंने प्रेम गोपियों से सीखा है, गोपियों की पाठशाला में ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा पंडित हो, है तो ढाई अक्षर, किंतु कृष्ण ही, कृष्ण का स्वरूप प्रेम ही है, प्रेम ही कृष्ण है, गॉड इज लव, लव इज गॉड। इसलिए सोचा मैं गोपियों की पाठशाला में जहाँ पर मैंने प्रेम सीखा है, असल में कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, किंतु हम लोगों के लिए कृष्ण का प्रेम उपयोगी न हो करके वो तो रसास्वादन करते हैं, इसलिए गोपियों में जो प्रेम है वही हमारे लिए कृष्ण को आस्वादन करने के लिए उपयोगी है। इसलिए कृष्ण मदनक्ख भाव इत्यादि राधा जी से सीखते हैं, उनमें नहीं है, उनमें महाभाव तक है। ललिता विशाखा उनकी सखियों में भी महाभाव रूढ़ तक है, ये सब नहीं है, मदनक्ख भाव नहीं है। तो उन्होंने सोचा जे ये उद्धव जाएगा उनकी प्रेम की पाठशाला में, शिक्षा करेगा प्रेम। अभी मैं गोपियों के विरह में तड़फ रहा हूँ, ब्रजवासियों के विरह में तड़फ रहा हूँ, अकेला, हमको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं। वहां पर नंद बाबा यशोदा को भी सांत्वना देने वाले लोग हैं, राधा जी को भी ललिता विशाखा सब सांत्वना देती हैं, परस्पर दुखों को बांट लेती हैं, किंतु कृष्ण का विरह जो गोपियों के लिए ब्रजवासियों के लिए कोई बांटने वाला नहीं। अपने विरह व्यथा को किसको सुनाए, कोई है नहीं। यदि उद्धव जाएगा तो वहां पर प्रेम की पाठशाला में पढ़ करके आएगा तो उसे दो चार बातें कर सकता, अपना दुख कुछ बांट लूंगा भेजा। किंतु जब उस कॉलेज में गए उद्धव जी, गोपियों ने परीक्षा की, परीक्षा क्या की, किसी कॉलेज में भर्ती होने के लिए परीक्षा ली जाती, परीक्षा ली, उद्धव बतलाओ तो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक निस्वार्थ और एक स्वार्थ, दो प्रकार का होता। हमारा प्रेम निस्वार्थ था और कृष्ण का भी प्रेम हमारे प्रति निस्वार्थ था। टूट कैसे गया, कैसे टूट गया, 16108 रानियों के साथ में शादी कर ली और हमें भुला दिए, ये कैसे हो गया उद्धव? उद्धव जी सिर खुजलाने लगे, नहीं उत्तर दे सके। इसलिए कॉलेज में भर्ती नहीं हो सके, केवल बाहरी स्ट्रक्चर देखा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ललिता विशाखा और प्रिंसिपल राधा जी को भी देखा, किंतु उनके भावों को तनिक भी ले नहीं सके। इसलिए अंत में वंदना की थी, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिप्रसा, गोपियों की चरण धूलि की मैं दूर से वंदना करता हूं। यहां तक और भी वंदना की, आशाम हो चरण रेणु किसाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल लताओ से दीना, ओ सौभाग्य से यदि वृंदावन में एक लता गुल्म औषधि किसी प्रकार से हमारा जन्म हो जाए और गोपिया अभिषार के समय में अपने चरण की धूलि हमारे सिर पर, हमारा जीवन साफ हो जाए। इसलिए देखा किंतु कोई भाव ले नहीं ले सके। नंद बाबा के यहां पर गए, शाम हो गई थी, शाम हो गई थी, नंद बाबा सुने जय आया है कृष्ण का मित्र, हमारा भतीजा आया है, घर में ले गए, ब्राह्मण के घर से खीर बनाया और बिना चीनी की ही मीठा का ही ऐसे ही सादा खीर बना, उनको खिलाया पिलाया। उद्धव जी कहते हैं जी कृष्ण ने हमको सांत्वना देने के लिए भेजा। और इधर नंद बाबा पूछना चाहते हैं कि हमारा लाला कृष्ण कैसा है, गला बंद हो जाता है, रोने लगते हैं, पूछ नहीं सके डायरेक्ट रूप में। उन्होंने कहा हमारा भैया वसुदेव ठीक है, भगवान की कृपा से उसके पापों ने कंस के रूप में उसको कंस को मारा, अब तो कुशल है, किसी प्रकार से बोले जे हमारा लाला कैसा है, कहते हुए फिर रोने लगे। कहते हैं कि मैं कृष्ण को भूलने के लिए जमुना के तट पर जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कृष्ण की लीलाएँ सब वहाँ पर हुई, कृष्ण की लीला ज्यादा। गोवर्धन में जाना भूलने के लिए जाता हूँ, उसका कोई वृक्ष कंदरा ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर कि कृष्ण की कोई लीलाएँ नहीं हुई हों और उनका स्मरण न दिला सके। कहीं भी ब्रज में जाता हूँ सांत्वना नहीं मिलती, और कह करके रोने लग गए। इन्होंने कहा जी सांत्वना तो देनी होगी, किंतु क्या कहूँ, यदि कोई कृष्ण के लिए रोता है उसका जन्म सार्थक है, एक बूंद भी कृष्ण के लिए बिरह से रोए उसी का रोना जगत में सार्थक है। जो अपने भाई बंधुओं के लिए रोते हैं वो तो सभी रोते हैं, वो विषयी लोग हैं, तो ये कृष्ण के लिए ये रो रहे हैं अपना पुत्र मान करके, क्यों उनको जो सृष्टि ब्रह्मा इत्यादि के भी सृष्टि करने वालों के भी मूल सृष्टि करने वाले हैं, उनको अपना पुत्र मान रहे हैं और उसके विरह में रो रहे हैं, तो मैं कैसे मना करूं। किंतु सांत्वना तो देना है। फिर सोचे मैं कैसे कहूं जैसे मत रो, मैं दिन को का नहीं, और कहूं जो खूब रो तो सांत्वना देना कैसा होगा। कुछ सोच विचार करके कर नहीं सके, अंत में यही बोले। शास्त्र कहते हैं जो कृष्ण के लिए रोए उसी का जीवन सार्थक है। तो ये बोले आप महाभागा हैं, आपकी पत्नी महाभागा, जो कृष्ण जो सर्वसरेश्वरों के ईश्वर है, स्वयं अनादि हैं, जगत के आदि हैं, और उसको आपने पुत्र मानकर और उसके लिए रो रहे हैं। नंद बाबा कुछ देर के लिए चुप हो गए और बोले जे बेटे मैंने सोचा था तुम्हारी अकिल कुछ आ गई है, कृष्ण के साथ रहते हो कुछ बुद्धि हो, किंतु तुम्हारे दूध के दांत अभी गिरे नहीं, अकल नहीं हुई। कैसे? उद्धव जी सोच रहे क्यों ऐसा करें। बोलिए देखो मेरा बेटा कृष्ण, मैंने सोचा था जब मेरा बेटा ही है और कुछ नहीं, उस पर मैंने शासन किया, अपनी जूती लाने के लिए सिर पर कहा और कितनी उसको आदेश मैंने दिया, पुत्र समझा, और तुम करे जो तू भगवानों का भी स्वयं भगवान है, तो मेरे जैसा कौन दुर्भागा हो जा ऐसा बेटा पा करके भी जिसको मैं खो दिया, तुम कहते हो परम सौभाग्यवान है। धर्जी बोले ये सच, इनको क्या कहूँ आखिर मेरे पास तो दूसरा कोई सांत्वना देने के लिए शब्द ही नहीं है। नंद बाबा बोलिए देखो एक ही बेटा था और एक ही पिता था, वो कौन? महाराज दशरथ। पुत्र के वियोग में बस हाराम और समाप्त, मेरा हृदय वज्र का बना हुआ, मैं अभी तक मर नहीं गया तो मैं पिता कहाँ हुआ। सारी रात इसी प्रकार से बरसा, घर में मकड़ों ने जाल बुन दिया था रसोई घर के ऊपर, बर्तन औंधे पड़े थे, रसोई किसके लिए हो? नंद बाबा यशोदा दोनों ऐसे ही अंधे हो गए। और इसके बाद में सवेरा हुआ, वो स्नान करने के लिए गए, कृष्ण कुंड वहीं पर है नंदगांव में, और देखा एक सुंदर कदम्ब का क्यारी है, करोड़ों कदम्ब वृक्ष हैं, और उसी में जो गोपियां कृष्ण के वियोग के बाद में घर नहीं गई थी, अभी तक कृष्ण के लिए वहीं पर प्रतीक्षा कर रही थी। राधा जी तो मारो मरी हुई हैं, गोरी सी माने सोने की पुतली है, उसको नाक में रुई दे करके देख रहे हैं कि जी रही है कि नहीं। गोपियों ने उद्धव जी को देख करके कहा अरे ये सोने का रथ कैसे आया? अरे सखी इसलिए आया, कंस मारा गया है ना, उसकी तेरहवीं करनी है, उसको पिंड देना है, तो ब्रजवासी लोग तो सभी मरे हों, उनका जाओ फित पिंड ले आओ और उसको तेरहवीं करो, इसलिए आया है, नहीं तो आने की जरूरत क्या थी। फिर दूसरे ने कहा जी देखो ये कृष्ण का मालूम होता है, दूत है जरूर, क्योंकि कृष्ण ही जैसा है, श्याम है किंतु श्याम नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखो इसको यहाँ क्या जरूरत है, हमारा तो संबंध था जब तक कि वो मानते थे, हम लोग को छोड़ करके चले गए, विवाह शादी सब कुछ कर ली, अब तो कोई संबंध नहीं। हाँ माता पिता के साथ में संबंध नहीं छूट सकता, कुपुत्र यदि छोड़ भी देगा तो भी ये कहना पड़ेगा कि मैं उनका पुत्र हूँ, हमारी माता वो है, क्योंकि उनके रक्त से शरीर इनका बना हुआ है, तो इनको यहाँ क्यों आना चाहिए, वो तो वहाँ जाना चाहिए, यहाँ फिर आए क्यों? इस तरह से आक्षेप करने लगी। अब इसके बाद में आपको संक्षेप में ये सुनाएंगे और मुझे जाने का आदेश दीजिए, और कल तो हम लोगों को यहाँ से जाना है, तो अगले समय में कहीं कभी आएं कुछ अधिक समय लेकर के, तो उनके संबंध में ब्रज की कृष्ण की लीलाओं के संबंध में गूढ़ रहस्य हैं उसको समझाने की।
ब्रजमंडल परिक्रमा के निमंत्रण दे